वेद की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उसे बहुत तेज बुखार था। उसकी मना करने के बावजूद शिवांशा ने प्रतीक को घर आने का बोल दिया था। प्रतीक के आने तक शिवांशा वेद का बुखार कम करने के लिए उसे ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी। पहले जब वेद शिवांशा के साथ बेरुखी से बात कर रहा था, तब गुस्से में शिवांशा की बिल की बात भी बाहर आ गई थी। अनजाने में उसने वेद को बता दिया था कि उसने वेद के मोबाइल के कुछ मैसेज देख लिए थे और साथ ही उसकी शर्ट पर एक लिपस्टिक का निशान भी था। वेद की खराब तबीयत देखकर शिवांशा का गुस्सा और शक सब खुद ब खुद मिट गए थे और वो पूरे मन से उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। उसकी ये मासूमियत और निस्वार्थ भाव देखकर वेद को हैरानी के साथ साथ अजीब भी लग रहा था। हालांकि उसने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसने शिवांशा को सच भी नहीं बताया था। क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि मेरी शर्ट पर वो लिपस्टिक का निशान किसका था? वेद ने शिवांशा की तरफ देखकर गंभीर आवाज में पूछा। आप ये पूछकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, शिवांशा ने नजरें नीचे करके कहा। उसे पहले ही इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने वेद पर शक किया। वेद ने उसे देखकर तंज भरे लहजे में सिर हिलाया और फिर उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। शिवांशा ने उसे रोकना चाहा पर वेद तब तक बैठ चुका था। वेद ने शिवांशा की आंखों में देखा और गहरी सांस लेकर संजीदा आवाज में कहा, वो मिहिका का था, क्योंकि कल रात मैं उससे मिला था। जैसे ही वेद ने मिहिका का नाम लिया, शिवांशा के हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई थीं। वेद ने शिवांशा के हाथों की तरफ देखा, जो अपना गुस्सा और जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। वेद ने शिवांशा के हाथों को पकड़कर उसकी मुट्ठियों को खोला और फिर शिवांशा के चेहरे को ऊपर किया। कल रात मेरे पास तेज का कॉल आया था और उसी के पास मैं किसी काम से चला गया था। जब वापस आ रहा था, उसी वक्त से मेरी तबीयत खराब होने लगी और मुझे अजीब लगने लगा। मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा था और गाड़ी से बाहर आ गया। इत्तेफाक से मिहिका वहां से जा रही थी और उसने मुझे देखा। उसने मुझे संभाला था और इसी चक्कर में शायद वो निशान आ गया होगा, वेद ने अपनी सफाई में कहा। वो किसी भी तरह से गलत नहीं था और उसे हर एक चीज अच्छे से याद भी थी। सुबह मिहिका जी यहां आई थी, क्या वो आपके बारे में जानने के लिए आई थी? शिवांशा ने आंखें बड़ी करके पूछा। अक्षत ने भी यही बताया था कि पहले मिहिका ने घर आने से मना कर दिया था, लेकिन अचानक वो उन्हें सरप्राइज देने के लिए ब्रेकफास्ट पर पहुंच गई थी। अब शिवांशा को समझ आ रहा था कि वो किसी तरह का सरप्राइज नहीं था, बल्कि वो वेद की तबीयत के बारे में जानने के लिए आई थी। वेद ने उन्हें कुछ नहीं बताया था तो मिहिका भी चुप थी। हाँ, उसने मुझे सुबह हॉस्पिटल जाने और अपनी हेल्थ अपडेट देने के बारे में कहा था। उसके मैसेज का जवाब नहीं दे पाया, इसलिए वो खुद पहुंच गई होगी, वेद ने शांत लहजे में जवाब दिया। जैसे ही शिवांशा के सामने पूरा सच आया, उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वो मन ही मन खुद को कोसने लगी कि आखिर वो वेद पर शक कैसे कर सकती है। उसके चेहरे पर आए इन पछतावे के भाव को वेद अच्छे से समझता था। उसने शिवांशा के गाल को सहलाया और कहा, डोंट वरी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे लेकर थोड़ा पजेसिव हो रही हो, और तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है। तो आगे से अपने मन में कुछ नहीं रखना और मुझे बता देना। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। वेद के बोलने का लहजा काफी हल्का हो गया था और अब वो शिवांशा को परेशान करने लगा था। शिवांशा ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा और कहा, मुझे आप पर पूरा यकीन है। और किसने कहा आप बुरे हैं? फिर तो कहना पड़ेगा तुम बुरी हो। तुम्हें मुझ पर पूरा यकीन है, फिर भी तुमने मुझ पर शक किया, वेद ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। सॉरी ना, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, शिवांशा ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। वेद ने तुरंत उसकी तरफ देखा और हां में सिर हिला दिया था। उसने शिवांशा के फोरहेड पर हल्का सा किस किया। तभी प्रतीक भी वहां पर पहुंच गया था। उसने अंदर आने से पहले कमरे पर नॉक किया तो शिवांशा जल्दी से वेद से दूर होकर बेड से नीचे आ गई थी। मैं ठीक हूं, तुमने बेवजह उसे बुला लिया, वेद ने हल्की चिंचलाहट भरे भाव से कहा और फिर प्रतीक को अंदर आने के लिए कह दिया था। उन्होंने देखा प्रतीक पहले ही अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर आया था ताकि वो वेद का इनिशियल चेकअप कर सके। प्रतीक में यही लगा था कि ना जाने वेद की तबीयत कितनी खराब है जो शिवांशा ने उसे कॉल कर दिया था। डॉक्टर ने शुरुआती जांच की और कुछ दवाइयां लिखते हुए कहा, बुखार की वजह से बॉडी वीक हो गई होगी, बाकी आपको कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए। लगता है आप पिछले दिनों दवाइयां ठीक से नहीं ले रहे हैं मिस्टर चौहान। हाँ, एक आध डोज मिस हो सकते हैं, वेद ने जवाब दिया। रोहन की हियरिंग, शिवांशा को संभालने और ऑफिस के कामों के चलते वेद को खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिला था। ऐसे में उसका इस तरफ भी ध्यान नहीं गया कि उसने ठीक से मेडिसिन नहीं ली है और इसका उसकी बॉडी पर बुरा असर हो सकता है। नहीं मिस्टर चौहान, आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी डायबिटीज इतनी डेंजरस है। आप फिट रहते हैं ये अच्छी बात है, पर कुछ जेनेटिक बीमारियों का कुछ नहीं किया जा सकता।
आप एक भी टाइम की मेडिसिन स्किप नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर ने वेद को समझाया। वेद का चेकअप करने और उसे बाद में अस्पताल आने का कहकर डॉक्टर प्रतीक के साथ वहां से चला गया था। अब रूम में वेद और शिवांशा अकेले थे। वेद की तबीयत भी अब थोड़ी सुधर चुकी थी। अरमान के घर पर अरमान अपने वर्कस्पेस में काम कर रहा था कि तभी उसके पास उसके डैड देवेश का कॉल आया। देवेश तभी कॉल करता था जब कोई काम होता था। अरमान ने उसके कॉल को इग्नोर किया, लेकिन उसके बार बार कॉल आने पर उसे रिसीव करना ही पड़ा। अब क्या तुम मेरा कॉल भी नहीं उठाओगे? देवेश ने तंज भरे लहजे में कहा। मुझे लगा आपने गलती से मुझे कॉल कर दिया है, वरना आपकी स्पीड डायल पर तो सबसे पहला नंबर आपके प्यारे भाई साहब का होता है। फुर्सत मिल गई आपको अपने भाई साहब के कामों से जो आप अपने बच्चों को कॉल करने का टाइम निकाल पाए, अरमान ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा। ताने मारना बंद करो। क्या मतलब है कि बच्चों के लिए टाइम नहीं है? तुम ही मनन को लेकर दिल्ली पहुंच गए थे और तुम्हें ही शौक चढ़ा है कि सब कुछ अपने आप करूंगा, देवेश ने उसे फटकारते हुए जवाब दिया। अरमान ने गहरी सांस ली। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल चुप हो गया था, क्योंकि देवेश इतनी सख्ती से सिर्फ उसी के साथ पेश आते थे, जबकि तेजिंदर के सामने तो वो अपने मन की बात तक नहीं कह पाते थे। अरमान को आज भी याद था जब उसकी माँ के मरने के बाद मनन की देखभाल के लिए उन्होंने उन्हें अब्रॉड सेटल होने और आगे का इलाज करवाने का कहा, तो तेजिंदर के मना करने पर देवेश ने उनके साथ आने से साफ मना कर दिया था। उसी दिन अरमान ने यह सोच लिया था कि वो राजावत फैमिली से कभी किसी तरह की हेल्प नहीं लेगा। अरमान के चुप हो जाने पर देवेश ने सख्त आवाज में कहा, पूछोगे नहीं कि मैंने कॉल क्यों किया है? कौन सा मेरे ना पूछने पर आप नहीं बताने वाले हैं? अरमान ने जवाब दिया। इस बदतमीजी पर देवेश ने अपनी मुठ्ठियां कस ली थी। उन्होंने दांत बीचते हुए कहा, मुझे भी तुम दोनों की परवाह है, तो ऐसे मत जताओ जैसे मैंने तुम दोनों को लावारिस छोड़ दिया है। मैं दिल्ली आया हुआ था, घर आ रहा हूं और सोच रहा हूं एक दो दिन यहीं पर रुक जाऊं। देवेश की बात सुनते ही अरमान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उसके मुंह से तुरंत निकला, आज से पहले तो आप कभी कुछ घंटों से ज्यादा नहीं रुके हैं। अगर आपको मनन से मिलना है तो आप मिलकर वापस जा सकते हैं, यहां रुकने की जरूरत नहीं है।
तुम खुद ही मुझे ताने मारते रहते हो कि मैं तुम लोगों के साथ समय नहीं बिताता, और अब जब मैं आ रहा हूं तो तुम मुझे निकालने में लगे हो। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है, मैं बस बताने के लिए कॉल किया है ताकि लंच तैयार रखो, देवेश ने बेरुखी से जवाब दिया और कॉल कट कर दिया था। नहीं, वो यहां नहीं आ सकते हैं, अरमान ने सिर पकड़कर कहा। राजावत फैमिली इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि रोहन अरमान के साथ रह रहा है। इन दिनों राजावत फैमिली के साथ जो भी हो रहा था वो उसका जिम्मेदार शिवांशा को ही मानते थे, यहां तक कि देवेश भी। ऐसे में अगर रोहन उनके हाथ लग जाता तो शिवांशा को ब्लैकमेल करना या उससे अपनी मनमर्जी करवाना उनके लिए आसान हो जाता। सिर्फ रोहन ही नहीं, नवयांशी भी उनके साथ रह रही थी, जो वेद की बहन थी। वेद की वजह से ही शिवांशा को उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत मिल रही थी। मुझे कुछ भी करके उन्हें यहां आने से रोकना होगा। नहीं, मैं उन्हें यहां आने से नहीं रोक सकता हूं, मुझे उन्हें यहां रोकने से रोकना होगा, अरमान ने हड़बड़ाहट के साथ कहा और जल्दी से कमरे से बाहर आ गया था। उसने लिविंग रूम की तरफ देखा। नवयांशी के आने के बाद उसके घर की स्थिति काफी बेहतर हो गई थी। पहले मनन एनी टाइम गेम खेलता रहता था, तो अब वो गेम खेलने की बजाय रोहन के साथ एक्टिविटी कर रहा था। वहीं नवयांशी उनका ध्यान रखते हुए उनके पास ही अपने ही कामों में लगी हुई थी। अटेंशन प्लीज, उनका ध्यान खुद की तरफ खींचने के लिए अरमान ने कहा। अरमान, ये कोई स्कूल नहीं है जो तुम आकर अटेंशन करवा रहे हो, हमारे पास टाइम नहीं है जो तुम्हारी तरफ ध्यान दे, जाकर अपना काम करो, मनन बोला और उसने अरमान की तरफ देखा तक नहीं था। हाँ, रोहन ने जरूर उसकी तरफ ध्यान दिया था, जबकि मनन का जवाब सुनकर नवयांशी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। अरमान ने मनन और नवयांशी को देखकर अपनी मुठ्ठियां कस ली थीं। बदतमीज कहीं के, अरमान धीरे से बड़बड़ाया और फिर गहरी सांस लेकर तेज और सख्त आवाज में बोला, देखो, मैं यहां कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूं। मनन, डैड यहां हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, वो हमसे मिलेंगे और हमेशा की तरह बाई बोलकर चले जाएंगे, मनन बोला। नहीं, वो इस बार हमारे साथ रुकना चाहते हैं और तुम्हें कुछ भी करके उन्हें यहां से भगाना होगा। चैंप और नवयांशी हमारे साथ रह रहे हैं, ये डैड को पता नहीं चलना चाहिए, अरमान ने उसे समझाते हुए कहा। इसी के साथ नवयांशी के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए थे। रोहन पहले से ही मामले की गंभीरता को समझता था, जबकि नवयांशी को भी अब पता चल गया था कि रोहन के वहां रहने के बारे में राजावत फैमिली को पता क्यों नहीं चलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, रोहन ने परेशानी भरे चेहरे के साथ कहा। डोंट वरी रोहन, कुछ ना कुछ सोच लेंगे, नवयांशी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं ऐसा करती हूँ, रोहन के साथ किसी होटल में चली जाती हूँ जब तक वो यहाँ है, फिर हम वापस आ जाएंगे। हाँ, प्लान काफी अच्छा है, चलो अपना जरूरी सामान लो और जल्दी से जाओ, अरमान बोला। नवयांशी ने उसकी बात पर हामी भरी, लेकिन जैसे ही वो उठकर खड़ी हुई घर की डोरबेल बज चुकी थी। ये उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी कि दरवाजे पर कौन खड़ा हुआ था, उन्हें संभालने का मौका तक नहीं मिला था। अरमान ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। पिछले आधे घंटे से देवेश उसे कॉल कर रहा था और वो उसे इग्नोर कर रहा था। देवेश अब उसके दरवाजे तक पहुंच गया था और अंदर वो नवयांशी और रोहन के साथ था। लगता है वो आ गए हैं, नवयांशी ने कहा।
लगता नहीं, ऑफ कोर्स वो आ गए हैं। तुम दोनों को कहीं छुपना होगा, अरमान जल्दी से बोला और रोहन को उठने में मदद करने लगा। वो रोहन को वर्क स्पेस में लेकर जाने लगा। वही एक जगह थी जहां देवेश कभी नहीं जाने वाला था। रोहन को वहां छोड़ने के बाद अरमान ने नव्यांशी की तरफ देखा, जो अभी भी वहां पर खड़ी हुई थी। तुम्हें कोई स्पेशल इन्विटेशन देना होगा या उसकी तरह तुम्हें भी अंदर छोड़कर आऊं? जाओ जल्दी से, अरमान ने चिढ़ते हुए कहा। रोहन का मुझे समझ आता है, लेकिन तुम मुझे उनसे क्यों छुपा रहे हो? कौन सा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? बोल देना मैं तुम्हारी नई किरायेदार हूँ, नव्यांशी नवे परवाही से कहा। बेशक बेशक, मुझे तुमसे ऐसे ही बेवकूफी भरे सवाल की उम्मीद थी। तुम वेद सिंह चौहान की बहन हो और ये सब जानते हैं, अरमान ने झुंझलाकर जवाब दिया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वर्कस्पेस में धकेलने लगा। कहीं और छुप जाऊंगी, तुमने ही मुझे यहाँ आने से मना किया था, नव्यांशी उसकी तरफ देखते हुए बोली। वो जानबूझकर उसे परेशान कर रही थी। नव्यांशी, तुम वैसे भी मेरी सारी बातें नहीं मानती हो, तो इरिटेट करना बंद करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें यही सुनना है कि तुम इस जगह में आ सकती हो तो ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा। अब प्लीज अंदर जाओ और रोहन का ध्यान रखना, अरमान ने दांत भींचते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। नव्यांशी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। वहीं देवेश काफी देर से बाहर था और वो डोरबेल बजाता हुआ थक चुका था। दरवाजा खोलने से पहले अरमान ने मनन की तरफ देखा और उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना क्या करना है? मनन ने आंख मारते हुए उसकी बात पर सिर हिलाया। अरमान को खुशी थी कि किसी मामले में तो मनन उसे अच्छे से समझता था। वो दरवाजा खोलने के लिए बाहर की तरफ आ गया था। जैसे ही अरमान ने दरवाजा खोला तो उसे झटका सा लगा। बाहर सिर्फ देवेश ही नहीं बल्कि उसके साथ लीला भी खड़ी हुई थी, जिसका वहां आना किसी भी तरह से अच्छा संकेत नहीं था। आज के लिए इतना ही, और आज मैंने सच में बड़ा चैप्टर लिखा है, तो प्लीज सब समीक्षा किए बिना मत जाना। क्या लगता है, लीला किस इरादे से दिल्ली पहुंची है, या उसे पता चल गया है कि नव्यांशी वहां रहती है?